गुड मॉर्निंग मेरे स्वास्थ्य प्रेमी भाई और बहनों, हम सभी चर्चा कर रहे थे जीवन में सदा हेल्दी वेल्दी और हैप्पी कैसे रहें। कौन नहीं चाहता कि सदा हेल्दी रहें, वेल्दी रहें, हैप्पी रहें। इसका फाउंडेशन है हेल्थ। अगर जीवन में सदा हेल्दी हैं तो हैप्पी भी रहेंगे और धन भी कमाएंगे, वेल्दी भी बनेंगे। तो हेल्दी रहने के लिए हम चर्चा कर रहे थे फिजिकली भी हेल्दी रहें, मेंटली भी हेल्दी रहें, तो ही हम हेल्दी अनुभव करेंगे। शरीर कितना भी हट्टा कट्टा मोटा हो, कुछ भी हो, मन ठीक नहीं है तो कैसा लगेगा। मन कितना भी अच्छा हो लेकिन शरीर भी ठीक नहीं है, नहीं, दोनों परिपूरक है। तो फिजिकली भी हेल्दी रहें, मेंटली भी हेल्दी रहें। और दोनों के लिए मैं आपको बताया था कि एक तो बैलेंस्ड एंड हेल्दी डाइट, हेल्दी स्वास्थ्यकर भोजन खाएंगे, स्वास्थ्यप्रद भोजन खाएंगे तो फिजिकली हेल्दी रहेंगे और मन भी स्वस्थ हो जाएगा, क्योंकि जैसा अन्न ऐसा मन कहा जाता है। साथ साथ हमें एक्सरसाइज भी करने की आवश्यकता है। पहले ज़माने में लोग खेती बाड़ी करते थे, बहुत भाग दौड़ करते थे, विज्ञान के साधन कुछ नहीं थे, फिजिकली सब वर्क करते थे, इसलिए एक्सरसाइज कोई नहीं भी करे तो चल जाता था। लेकिन आज विज्ञान के ज़माने में जबकि सबके पास मोबाइल्स हैं, सबके पास गाड़ी मोटरें हैं, हमारी माताओं को तो सबसे ज़्यादा लग्जरी है, उनके किचन जाके देख लो, मिक्सी से लेकर सब कुछ है, घर में तो सब प्रकार के मशीन है। पहले कितना एक एक माता, बचपन में मैं देखता था, एक एक माता कितने मेहनत करती थी, तालाब में जाके कुआं से पानी उठा के गागर पूरा एक सिर पर एक बगल में पकड़ के, और कपड़े सारे हाथ से धुलाई करना और मसाला पीसना और धान कुटना, सब काम घर का एक एक झाड़ू पोछा बर्तन से लेके सब काम खुद कर देते। आजकल तो सब मशीन है, कपड़ा डाल दो, बटन दबाओ, घर कपड़े धुल गए। पहले तो कपड़े सुखाते थे कम से कम हाथ ऐसा करके, तो हाथ तो ऊपर उठता था। आजकल तो ड्राइंग मशीन भी आ गया है, तो कपड़े धुलाई करके डाल दो, उसमें एकदम सूख के निकल आता है, तो हाथ भी ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए फिर माताएं आती है, कहती है डॉक्टर साहब मेरा हाथ ही ऊपर नहीं उठता है, कैसे उठेगा भाई, सारे जीवन भर ऐसा किया नहीं तो उठेगा कैसे। तो आज विज्ञान के ज़माने में हम सभी सेडेंटरी हो गए हैं, आलसू हो गए हैं, इसलिए आज हम सभी को फिजिकली हेल्दी रहने के लिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात है गुड रेस्ट, और ये तीनों बातें हेल्दी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज एंड फिजिकल एक्टिविटी और गुड रेस्ट, ये तीन चीज़ें अगर ठीक है तो फिजिकली हम हेल्दी बनेंगे। इसी प्रकार मन के लिए भी तीन चीज़ें चाहिए, वो हम चर्चा करेंगे अभी। तो कल हम हमारा भोजन कैसा हो हम चर्चा कर रहे थे, आज हम सुनेंगे हम नियमित क्या एक्सरसाइज करें। दुनिया में जैसे खान पान के बारे में इतनी भ्रांतियां हैं, इतने लोगों के इतने मत मतांतर, एक साधारण आदमी मूंझ जाता है कि क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं। आप सभी को बहुत सिंपल फॉर्मूला मैंने बताया, देखिए मैं पिछले 35 इयर्स का मेरा जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, इतने हज़ारों डायबिटीज़ पेशेंट को देखा हूँ, और किसको हाई ब्लड प्रेशर है, किसको हार्ट की बीमारी है, किसको किडनी की बीमारी है, अनेक प्रकार की बीमारियों को देखते हुए मैंने जो देखा, जो पेशेंट्स के अनुभव से सुना, जो बहुत सारी किताब पढ़ के जो मैं आपका अनुभव में आपको सार में वही सुनाया कि मनुष्य एक शाकाहारी प्राणी है मेरे भाई और बहनों, बिल्कुल नॉनवेज तो टच भी नहीं करना है। दूसरी बात है कि मनुष्य शाकाहारी प्राणी है, इसलिए हमारा 50% से जो भी खाते हैं वो तो साग सब्जियां, फ्रूट्स वेजिटेबल्स हो तो बहुत अच्छा, 1/4 चावल चपाती अनाज हो, 1/4 दालें वगैरह हो तो बहुत अच्छा। तो ऐसा एक बैलेंस डाइट रखें, कम कम खाएँ, 4-5 बार खाएँ, तो उससे आपका वेट भी नहीं बढ़ेगा, शुगर भी नहीं बढ़ेगा, एकदम सब प्रकार के विटामिन मिनरल्स मिलेंगे, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगेगा आपको। दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है हमारा नियमित क्या व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें। जैसे खान पान के बारे में बहुत मत मतांतर है, इस प्रकार व्यायाम के बारे में भी कोई क्या सिखाता है, कोई क्या सिखाता है, कोई क्या सिखाता, और व्यक्ति मुंझ जाता है। देखिए, जो भी आज दुनिया में व्यायाम प्रचलित है, जो लोग सिखाते हैं, हर प्रकार का व्यायाम हर कोई नहीं कर सकता है, हर कोई नहीं कर सकता है। आप कितने आयु के हो, आप भाई हो या बहन हो, आपको और क्या बीमारियां व्याधियां हैं, इसके हिसाब से आपको खुद को जज करना है कि मुझे क्या करना है। दुनिया में जितने प्रकार के भी व्यायाम सिखाया जाता है, मुख्यतः चार प्रकार के ही हैं। एक है एरोबिक, अर्थात जिसमें हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जैसे चलना, दौड़ना, साइकिलिंग करना, स्विमिंग करना, रस्सी कूदा करना, फुटबॉल खेलना, ये सबको हम एरोबिक एक्सरसाइज कहते हैं। दूसरे हैं एनएरोबिक, जो जिम खाना में जाके आजकल डंबल बारबेल उठा के जो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज भी उसके कहा जाता है, आपका मसल्स फ्लैबी नहीं होंगे, एकदम स्ट्रांग बनेंगे, तो उसको कहते हैं एनएरोबिक एक्सरसाइज। उसमें थोड़े समय के लिए एक ग्रुप ऑफ मसल्स का ही यूज होता है, इसलिए ऑक्सीजन की इतनी आवश्यकता नहीं होती है। एरोबिक में तो होल बॉडी का एक्सरसाइज होता है एट ए टाइम, इसलिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है। तीसरा प्रकार जो एक्सरसाइज है, आज बहुत 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 लोकप्रिय है और पॉपुलर है, लोग सभी उसके फैन हैं। कौन से हैं, समझ गए होंगे लोग, उसको योगा 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 कहते रहते हैं। वास्तव में वो योगा नहीं है, वो आसन है। आज से हजारों साल पहले महर्षि पतंजलि जी हम सभी को योगासन सिखा के गए थे। योगा इज़ फॉर मेंटल हेल्थ एंड आसन इज़ फॉर फिजिकल हेल्थ। उन दिनों में कोई हेल्थ क्लब जिम खाना तो थे नहीं, तो लोगों को सदा हेल्दी रहने के लिए महर्षि पतंजलि ने हम सभी को मेंटली हेल्दी रहने के लिए योग साधना कैसे करें सिखा के गए थे। और शरीर को ठीक रखने के लिए जो पोस्चुरल एक्सरसाइजेस है, फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज है, शरीर लचीला रहे, इसलिए कहीं स्टिफनेस ना आ जाए, तो इसलिए जो एक्सरसाइज सिखाए थे उसको हम आसन कहेंगे। जैसे वज्रासन, जैसे हड़ासन, शीर्षासन, पद्मासन, अनेक प्रकार के आसन जो देख रहे हो, लगभग 250 प्रकार का आसन होगा आजकल, इतने वैरायटी आसन की बात मत पूछो। तो ये सब आसन ये शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, लेकिन आज जो योगा है, जो मानसिक स्वास्थ्य के लिए, इसका शरीर से कोई लेना देना नहीं है, ये संपूर्ण मानसिक है। तो ये योग तो वास्तव में वो लोग भूल ही गए, और जो शारीरिक व्यायाम आसन करते रहते हैं उसको ही योगा योगा कहते रहते हैं, वास्तव में वो योगा है नहीं, वो तो आसन है। और चौथा एक्सरसाइज है, वो है प्राणायाम, जिसको ब्रीदिंग एक्सरसाइज हम कहते हैं। अनुलोम विलोम, कपाल भाति, भस्त्रिका आदि जब करते हो, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक से फंक्शन करता है। तो चारों प्रकार का जो एक्सरसाइज बताया, एरोबिक, एनएरोबिक, आसन और प्राणायाम, ये चारों प्रकार का एक्सरसाइज में से सबसे फायदामंद और सहज है एरोबिक। जिमखाना हर कोई नहीं जा सकता है, और पैसा भी लगेगा, और उसमें ठीक से कोच चाहिए आपको, ठीक से अगर कोई नई ट्रेनिंग दिया, डिसलोकेशन हो जाएगा, जॉइंट्स और ही प्रॉब्लम हो सकता है। और आसन भी हर कोई नहीं कर सकता है, यंग एज में बॉडी लचीला होता है, जैसे मुड़ो वैसे मुड़ जाता है, थोड़ी उम्र के होने के बाद कहाँ मुड़ता है, जो बचपन से करता है बुढ़ापा तक कर लेगा, कोई बात नहीं। लेकिन अभी आपको 50-60 साल के बाद आपको आसन करने का अगर इंटरेस्ट आया, कहाँ कर पाएंगे, सबको ये आसन थोड़ा बहुत एक दो कर पाएंगे, बाकी सब कहाँ होता है, होता ही नहीं है, बॉडी मोड़ता ही नहीं शरीर। तो इसलिए आसन भी सबके लिए फिजिबल नहीं है। और प्राणायाम भी देखिए, हर प्रकार का एक्सरसाइज जिसने भी जो भी सिखाया उसमें फायदा के लिए लोगों को बताया गया, लेकिन हमें कब नहीं करना है वो भी हमें समझना ज़रूरी है। मान लीजिए आपको डायबिटीज़ है, आँखों के पर्दे पर उसका असर हो गया है, ब्लड प्रेशर है, आँखों के पर्दे पर असर हो गया है, और ज़ोर से आप कपालभाति कर रहे हो, फू 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 ज़ोर से एकदम, तो प्रेशर अंदर बढ़ेगा, तो और ब्लीडिंग होने का संभावना है। आपके हार्ट में प्रॉब्लम है, ज़ोर से कपालभाति करते हो, प्रॉब्लम होगा। आपको हाई ब्लड प्रेशर है, आप शीर्षासन कर रहे हो, नस फट जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगी, कुछ भी हो सकता है। तो हमें क्या करना है क्या नहीं करना है वो भी समझ चाहिए। तो ये सभी एक्सरसाइज जो बताया, इतने प्रकार के एक्सरसाइज में से सबसे सिंपल है एरोबिक एक्सरसाइज, जिसको कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज भी हम कहते हैं, हार्ट के लिए और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए भी, लंग्स के लिए बहुत अच्छा। और एरोबिक में भी बहुत प्रकार का वैरायटी है, जैसे चलना, दौड़ना, कूदना और रस्सी कूदना या स्विमिंग करना, ये सबको एरोबिक हम कहते हैं। इसमें से सबसे सिंपल है चलना, वॉकिंग। एक छोटा बच्चा को भी वॉकिंग करना आता है, सबको वॉकिंग करना आता है, किसको नहीं आता है। इसके लिए कोई ट्रेनर की आवश्यकता नहीं है। खाली एक बात याद रखना कि धीरे धीरे चलना, उसमें कुछ भी नहीं होगा आपका, जिसको टहलना कहा जाता है। बहुत लोग करते हैं वॉकिंग, लेकिन वो धीरे धीरे आराम से 24 घंटा चलते रहो तो भी वो कुछ भी कैलोरी बर्न नहीं होगा। तो इसलिए हमें थोड़ा सा ब्रिस्क वॉक करने की आवश्यकता है, थोड़ा फास्ट चलने की आवश्यकता है, तो ही वो फायदा होगा। आप एक्सरसाइज क्यों करते हैं? हम एक्सरसाइज से हमारा शरीर की सारी गंदगी निकल जाती है। जब आप एक्सरसाइज करते हो, ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होने के कारण शरीर के अनावश्यक चीज़ें हमारे पसीने से, हमारे सांस से निकल जाते हैं। हम, ये शरीर एक मशीन की तरह है, हम सारा दिन जो भी कुछ खाते हैं इसमें यूज होता है, और जो अनावश्यक चीज़ें हैं शरीर उसको निकाल देता है, जैसे पेशाब से, लेटरिन से, हम सभी बहुत सारे अनावश्यक चीज़ें, गंदगी निकल जाता है शरीर से। तो जो व्यक्ति हिलता नहीं है, डुलता नहीं है, उसका ब्लड सर्कुलेशन इतना धीमी हो जाता है कि वो सब इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस, जो अनावश्यक चीज़ें, शरीर से निकलते नहीं हैं, फिर हमारे भिन्न भिन्न अंग में जमा हो जाते हैं, जिसके कारण फिर आपको क्रैम्प्स होता है, पेन होता है, फिर हाय हाय करते रहते हैं लोग। तो ये सारे अननेसेसरी इन्फ्लामेटरी सब्सटेंसेस को शरीर से निकालने के लिए, एक्सक्रीट करने के लिए हमें एक्सरसाइज की आवश्यकता है। आपका हार्ट, आपका लंग्स मजबूत हो जाएंगे, आप सारे गंदगी फ्लश हो जाएंगे, हार्ट अटैक होगा ही नहीं आपको, और बॉडी स्ट्रांग हो जाएगा, लचीला रहेगा, बुढ़ापा तक भी आपकी बॉडी इम्यूनिटी बढ़ेगी, आपको फट से वायरस, वर्म्स, जर्म्स ये सब अटैक नहीं करेंगे। अभी देखिए जो कोरोना का सिलसिला चल रहा है, COVID-19, क्या आप देखना, जो बहुत डायबिटिक है, एल्डरली हैं, थोड़े बुजुर्ग हैं, जिनकी बॉडी इम्यूनिटी बहुत कम है, ऐसे लोग ही इसका विक्टिम बन रहे हैं। इन्फेक्शन तो हो रहा है, लेकिन 100 में से 5 लोगों का मौत हो रहा है। वो जो 5 लोगों का मौत हो रहा है, देखा गया है वो डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, उनको हार्ट की बीमारी है, जिसका बॉडी इम्यूनिटी बहुत कम है, ऐसे लोगों को फिर वायरस एकदम बेहाल कर देती है। तो आज अगर हम डेली एक्सरसाइज करेंगे, हमारे बॉडी इम्यूनिटी बढ़ेगी, तो हमें फट से कोई जर्म्स, वायरस अटैक कर ही नहीं सकते हैं। तो रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, आपका बॉडी वेट मेंटेन होकर रहेगा, ओबेसिटी कम हो जाएगी, आपके जॉइंट पेन वगैरह ये सब ठीक हो जाएगा, बहुत सारी बीमारियों से आप मुक्त हो सकते हो। अगर रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, जैसे अन्न मन से भी संबंधित है, ऐसे ही रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो आपके ब्रेन से बहुत सुंदर एंडरफिन सीक्रेट होते हैं, जिससे आपको एक सेंस ऑफ वेलबींग अनुभव होगा, बहुत अच्छा लगेगा, यूफोरिक फील करेंगे। जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, हिलते नहीं, डुलते नहीं, बैठे रहते हैं, तो उनका मन भी एकदम उदास रहता है। आप रेगुलर एक्सरसाइज करके देखो, देखना मन से भी चंगा हो जाएंगे एकदम, इतना अच्छा लगेगा बात मत पूछो। तो तन से मन से दोनों रीति से आप फिट रह सकते हो। एक्सरसाइज बहुत बड़ा एडिक्शन है, जो रोज करता है एक दिन भी वो मिस नहीं कर सकता है। तो वॉकिंग सबसे सिंपल है, सहज है, हर कोई कर सकता है। जिसके घुटने दर्द है वो चल नहीं सकते हैं, उन लोगों के लिए फिर एक साइकिलिंग करना बहुत अच्छा है। घर में आजकल साइकिल, एक स्टैटिक साइकिल आता है, स्टैंडिंग ऐसे खड़ा ही रहता है, और उसके ऊपर आप बैठ जाओ तो आपका सारा शरीर का वजन साइकिल के ऊपर चला जाता है, आपका घुटना फ्री रहता है। हम जब खड़े रहते हैं, हमारा शरीर का सारा वजन देखना घुटने पर आता है, इसलिए पेन होता है। जब हम साइकिल में बैठ जाते हैं, हमारा बॉडी वेट ट्रांसमिट हो जाता है, तो इसलिए जो ओवरवेट हैं, एल्डरली हैं, बाहर इधर उधर आउटडोर साइकिलिंग करना आजकल बड़ा रिस्की है, धूल मिट्टी है, उबड़ खाबड़ है, सर्दी गर्मी बारिश है, कोई गाड़ी मोटर ठोक देंगे, कहाँ किधर जाना है। इसलिए आजकल एक इजी बाइक मिलता है, एक स्टैंडिंग साइकिल है, जो घर में रखे आप उसके ऊपर चढ़ के आप 10-10 मिनट, 15-15 मिनट, उसमें कैलोरी मीटर होता है, आप कितने कैलोरी बर्न किए हो दिखाता है। अगर रोज़ हम एक्सरसाइज करके 500 कैलोरी बर्न करते हैं, और खान पान में हमारा 500 कैलोरी कम खाते हैं तो हमारा बॉडी वेट मेंटेन नहीं होगा, वेट कम नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए एक्सरसाइज द्वारा रोज़ हमें 500 कैलोरी तक बर्न करना है। इसके लिए 1 घंटा तो मिनिमम एक्सरसाइज करना ही पड़ेगा, सवेरे आधा घंटा, शाम को आधा घंटा। और वॉकिंग के लिए आपको हमेशा जूता पहनना आवश्यक है। जूता नहीं पहनेंगे तो पाँव में मोच आ सकता है, घाव हो सकता है, डायबिटीज़ जिसको अगर है तो उसके पाँव में न्यूरोपैथी हो जाती है, सेंसेशन चला जाता है। नंगे पाँव में चलोगे तो कहीं कट जाएगा तो पता नहीं चलेगा, फिर इन्फेक्शन होकर पैर भी कट जाएगा। मेरे भाई और बहनों, आप कोई भी हो, आपको कोई बीमारी हो या ना हो, मैं कहता हूँ एक कंफर्टेबल जूता पहनो, जो टाइट भी ना हो, लूज भी ना हो, एकदम सॉफ्ट मुलायम वाला जूता पहनो और वॉकिंग करो, देखना आपको कितना मज़ा आएगा। स्पोर्ट्स शूज़ खरीद सकते हो तो बहुत अच्छा है। आप आजकल तो 200-250 रुपया में भी मिलते हैं जूते, लेकिन सॉफ्ट मुलायम हो तो बहुत अच्छा है। और हमेशा खाली पेट ही एक्सरसाइज करना है, खाली पेट करना है। खाना पूरा एकदम आकंठ भोजन कर लिया उसके बाद एक्सरसाइज नहीं, बिल्कुल नहीं। उस समय ब्लड सर्कुलेशन हमारा इंटेस्टाइन तक डाइवर्ट हो जाता है। तो इसलिए खाली पेट सवेरे नाश्ते से पहले, शाम को डिनर से पहले आधा घंटा ज़रूर एक्सरसाइज करें। और एक्सरसाइज के बीच में अगर आपको कोई पानी पीने की आवश्यकता होती है, कोई थोड़ा सा बहुत हल्का ड्राई फ्रूट ले सकते हो कि कोई फल भी खा सकते हो, तो बीच में भी पानी पी सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल कुछ नहीं खाना, पेट भर के नहीं खाना है। एक्सरसाइज से पहले थोड़ा बहुत आप ले सकते हो, नहीं तो गला भी सूख जाता है, पानी भी पी सकते हो। फिर एक्सरसाइज के बाद जो खाना है खाओ। अगर आपको डायबिटीज़ है, कहीं भी एक्सरसाइज करने के लिए जाते हो तो ज़रूर आपके साथ ग्लूकोज पाउडर और एक ग्लूकोमीटर ज़रूर साथ में लेके जाना, क्योंकि अगर एक्सरसाइज करते करते ज़्यादा एक्सरसाइज कर दोगे तो कभी कभी शुगर लो हो जाता है लोगों का, फिर एकदम घबराहट होगा, चक्कर आएगा, अंधेरा लगेगा, पसीना खूब छूटेगा, एकदम एकदम कभी तो बेहोश भी हो जाते हैं लोग। तो इसलिए इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, हमेशा आपको अगर डायबिटीज़ है तो याद रखना कि हमेशा कहीं भी जाते हो तो एक ग्लूकोन डी पाउडर हमेशा साथ में रखो, और ग्लूकोमीटर भी ज़रूर रखो। अगर आप नहीं खरीदो तो खरीदो। मेरे भाई और बहनों, आप सभी मोबाइल रखते हो, लोग तो मोबाइल ऐसे एडिक्ट हो गए हैं कि बात मत पूछो। तो मोबाइल कोई जानलेवा बीमारी से बचाने के कोई साधन नहीं है, लेकिन ग्लूकोमीटर आपको बहुत एक्चुअली मदद करेगा। अचानक शुगर लो हो गया, हाई हो गया, कुछ हो गया, कहीं दूसरे गांव में गए हो, वहाँ लेबोरेटरी नहीं है, कैसे करोगे? तो आप साथ में लेके जाओगे तो चेक कर सकते हो। कभी भी आपको थोड़ा एबनॉर्मल लग रहा है, चेक करो, शुगर लो होगा तो हाथ पांव कांप के कभी बेहोश भी हो जाओगे। इसलिए हमेशा ग्लूकोमीटर साथ में रखो। अगर 70 से कम हो गया तो ज़रूर 3 चम्मच ग्लूकोज पाउडर मुँह में डाल दो, फट से आपका शुगर 50 बढ़ जाएगा। रोज़ ग्लूकोज पाउडर नहीं पीना है, लेकिन उसी अनुसार फिर आपकी दवाई सेटिंग करनी पड़ेगी। अगर आपका शुगर लो हो रहा है तो डॉक्टर को बता के आपका दवाइयों को कम कराओ, ठीक है? तो ग्लूकोमीटर रखो, खाना खाने से पहले ग्लूकोज पाउडर लेके एक्सरसाइज करो, आधा घंटा जम के करना है। पहले स्लो करो, फिर धीरे 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 बढ़ा के, ड्यूरेशन बढ़ा के, उसके आप इंटेंसिटी बढ़ा के आधा घंटा जब पूरा अच्छी तरह से कर पाओगे, देखना आपको कितना अच्छा लगता है। और एक्सरसाइज इज ए लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट, ऐसे नहीं कि 2-4 दिन क्या छोड़ दिया, नहीं, जब तक जीना है तब तक एक्सरसाइज करना है। जैसे आप गाड़ी खरीदते हो, गाड़ी को 2-4 दिन चला के आप गैरेज में रखे रहो महीनों तक, कैसे होगा? चलाते ही नहीं हो। हमारे पास बहुत अच्छी गाड़ी है, डेली अगरबत्ती लेके, वाह बढ़िया गाड़ी है, तो क्या होगा? गाड़ी को चलाना पड़ता है तो ही गाड़ी ठीक रहेगी। इसी प्रकार हम भी जीवन में स्वस्थ रहने के लिए रोज़ एक्सरसाइज करना है, रोज़। एक दिन भी नहीं, 2 दिन भी अगर एक्सरसाइज मिस कर दिया तो आपको कुछ भी फायदा नहीं होगा। जैसे बचपन से हम खाते आ रहे हैं, 2 दिन भी खाना नहीं खाओ तो कैसा लगता है आपको? ऐसे ही शारीरिक व्यायाम भी रोज़ आधा घंटा, मिनिमम 1 घंटा कर सकते हो तो बहुत अच्छा। जिसका वजन घटाना है तो 1 घंटा करना ही है, तो एक्सरसाइज करें। लेकिन क्या एक्सरसाइज करें? वॉकिंग वास्तव में कंप्लीट एक्सरसाइज नहीं है। वॉकिंग में हमारा हाथ ऊपर उठता नहीं, हाथ आगे जाता नहीं, हाथ साइड में उठता नहीं, घुटने मुड़ते नहीं, हमारा बैक मसल्स, हमारे साइड मसल्स यूज होते नहीं। तो वॉकिंग अच्छा है, जो कोई कुछ नहीं करता है उससे तो उसके लिए तो अच्छा है, लेकिन वॉकिंग कंप्लीट एक्सरसाइज नहीं है। इसलिए आप सभी को मैं एक सुंदर एक्सरसाइज बनवाया हूँ। खास करके हमने देखा है हमारे माउंट आबू में बहुत अर्ली मॉर्निंग बहुत सारे साधु संत परिक्रमा लगाते हैं चारों तरफ, और वो कभी हॉस्पिटल में उनको नहीं देखा। तो जो नियमित रूप से एक्सरसाइज करेगा वो हेल्दी रहेगा। तो मॉर्निंग वॉक सवेरे सवेरे प्राकृतिक देखना कितना एकदम सुंदर अवस्था, कोई प्रदूषण नहीं, कोई हल्ला गुल्ला नहीं, सब लोग सोए पड़े रहते हैं, ऐसे समय पर प्रातः भ्रमण करेंगे तो बहुत अच्छा। इसलिए हमारे देश का ही तो कहावत है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी वाइज। तो सवेरे सवेरे उठ के चलो, थोड़ा ब्रिस्क वॉक करो, फास्ट चलो। और प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनि भगवान को याद करके चलते थे। इसलिए मैं आपके लिए एक सुंदर वीडियो बनाया हूँ, वॉकिंग योगा। वॉकिंग योगा आप यूट्यूब से डाउनलोड कर सकते हो, वॉकिंग योगा बाय डॉक्टर श्रीमंत। आप देखना, उसमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, सर्दी बारिश कहीं कहाँ जाना है, घर में ही छोटा सा एरिया में, 4-5 फुट एरिया में ही आप ये वॉकिंग योगा कर सकते हो। इसमें परमात्मा के 300 नाम का एक सुंदर गीत है, रूहानी यात्रा। आप अगर सुनेंगे ना, आपका मन गदगद उठेगा। हमारे भारतीय शास्त्र में लिखा है, अगर शिव परमात्मा का नाम, 12 ज्योतिर्लिंगम का नाम कोई अगर सवरे सवरे स्मरण करता है, तो 7 जन्मम कृतम पापम स्मरणेन विनश्यन्ति, 7 जन्म का किया हुआ पाप भस्म हो जाएगा लिखा है। तो मैं परमात्मा के सहस्र नाम है, शिव बाबा के 1000 नाम है, उनमें से 300 नाम लेकर ये गीत खास बनाया हूँ, जो आप सुनिए देखना, आपका मन गदगद उठेगा। उनके प्रति भक्ति भावना जागृत करते हुए अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो तन भी दुरुस्त मन भी दुरुस्त दोनों हो जाएगा। और खाली एक्सरसाइज करो, किसी को कहो तो वो बोर हो जाता है। आपके लिए बहुत सुंदर सुंदर डिवाइन सॉन्ग्स के साथ कैसे करना है वो मैं बनाया हूँ। तो एक तो सवेरे सवेरे वॉकिंग योगा करना है, जो थोड़ा यंग हैं, जो चल सकते हैं, जिनके घुटने इतने दर्द नहीं है, उनके लिए बहुत अच्छा। और ये वॉकिंग योगा आधा घंटा मेरे साथ करो, देखना पसीने में लतर पतर हो जाओगे आप। 2 घंटा बाहर घूम के आओ, जितना कैलोरी बर्न होगा आधे घंटे में उससे ज़्यादा कैलोरी बर्न होगा। ये वॉकिंग योगा करते हुए 6 महीने में लोगों ने 18 किलो कम कर दिया है, एक माता तो 19 किलो कम कर दी। तो बहुत सुंदर, आप वॉकिंग योगा रोज़ सवेरे करो तो भगवान का नाम लेते हुए बेड़ा पार हो जाएगा, तन भी दुरुस्त मन भी दुरुस्त हो जाएगा। दूसरा एक्सरसाइज आप सभी के लिए बनाया हूँ, जिसको मैं संपूर्ण व्यायाम बा होलिस्टिक एक्सरसाइज कहता हूँ, जिसमें बहुत सुंदर सुंदर भजन के साथ होल बॉडी का कैसे सेल्फ बॉडी मसाज करेंगे, एक्यूप्रेशर करेंगे और डिटॉक्स करेंगे। उस एक्सरसाइज में बूढ़ी बूढ़ी माताएं भी, बहुत एल्डरली है, जो कुछ नहीं कर सकते वो कर सकते हैं। एक्सरसाइज का लक्ष्य है कि हमारा शरीर का एक एक जॉइंट को मोबिलाइज कर लें, एक एक मसल्स को यूज करें, ताकि वो एट्रोफी ना हो जाए। इसलिए आप होल बॉडी का एक्सरसाइज कैसे करें वो आधा घंटा क्लिप से आप समझ जाओगे पूरा। तो आप डाउनलोड कीजिए और प्रैक्टिस रोज़ करिए घर में, देखिए फिर इसका कितना फ़ायदा होता है। ठीक है, आपका शुगर कंट्रोल हो जाएगा। किसी ने बहुत सुंदर कहा, एक्सरसाइज द बेस्ट इंसुलिन सेंसिटाइजर अवेलेबल इन द मार्केट, बेटर देन एनी मेडिकेशन करेंटली अवेलेबल। आज दुनिया में डायबिटीज़ के लिए जितनी दवाइयाँ मिलती है, सबसे सस्ती दवाई, सबसे इफेक्टिव दवाई वॉकिंग करना, एक्सरसाइज करना। तो मेरे भाई और बहनों, रोज़ एक्सरसाइज करो, सवेरे मॉर्निंग वॉक, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, घर में कर सकते हो वॉकिंग योगा। ऐसे भी लॉकडाउन है, कहीं कोई कोई पकड़ेगा, कुछ होगा, क्यों जाना है, घर में करो। और दूसरा है होलिस्टिक एक्सरसाइज, ये दोनों आप यूट्यूब से डाउनलोड करके करो, देखो मेरे भाई और बहनों, एकदम स्वस्थ रहोगे, तंदुरुस्त रहोगे, फिट रहोगे, तन से भी मन से भी। ठीक है, तीसरी बात है मन को और तन को रेस्ट देना है। इसके लिए चाहिए मेडिटेशन। जब आप मेडिटेशन करोगे, देखो हम रेस्ट करते हैं तो हमारा बॉडी का हीलिंग होता है, रिपेयर होता है। सारा दिन भाग दौड़ करके जितना मेहनत करते हो बॉडी, फिर जब हम सो जाते हैं डीप साउंड स्लीप में, बॉडी उस समय रिपेयर करता है अपने आप को। इसी प्रकार मेडिटेशन इज ऑल्सो ए हीलिंग प्रोसीजर। मैं कल बताया था आपको कि मन में सदा अच्छे विचार लाना, दीज आर द फूड फॉर आवर माइंड। मन में जैसे आप शरीर को कुछ भी ऐसे फुटपाथ का मक्खी बैठे हैं, गंदा कोई खाएंगे क्या? आप खाएंगे नहीं ना। मनपसंद चीज़, स्वादिष्ट चीज़ें खाते हो जिसमें स्वास्थ्य अच्छा हो। ऐसे ही मन को भी ठीक रखने के लिए हमें चाहिए मन का शुद्ध भोजन। मन का भोजन है हमारा थॉट्स, एंड सारे दिन में लगभग 50,000 सोच हमारा चलता है, और वो 50,000 सोच में भी से 4 प्रकार के ही सोच होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, नेसेसरी, अननेसेसरी। इसमें खाली पॉजिटिव सोचने से ही आपके अंदर शक्ति जमा होती है, बाकी सारे थॉट से आपका शक्ति ड्रेन आउट हो जाता है। तो आज दुनिया में कोई भी पॉजिटिव थॉट्स मन में चलाता ही नहीं है, इसलिए हम थके थके रहते हैं। 8 घंटा सोने के बाद भी फ्रेश नहीं लगता है। जो सदा सकारात्मक सोचेगा, पॉजिटिव सोचेगा, बहुत कम सोने के बाद भी उसको फ्रेश लगता है। हमारे ब्रह्मा बाबा को किसने सोया हुआ नहीं देखा। बाबा रात सभी खाने पीने के बाद, सबको सब मिला एक ने देखने के बाद, लास्ट में अपने कमरे में जाते थे और कमरे का कभी कुंडी अंदर नहीं डालते थे, वो पर्दा खाली थोड़ा सा ढक देते थे। और 2 बजे के बाद तो ब्रह्मा बाबा को किसने सोते हुए नहीं देखा, सारा जीवन काल में 93 उम्र तक, 69 से लेकर लोगों ने देखा कभी एक दिन भी नहीं। तो मेरा कहने का भावार्थ है कि हम जो मेडिटेशन दुनिया में सिखाते हैं वो वास्तव में एक सही अर्थ में मेडिटेशन तो है ही नहीं। मेडिटेशन शब्द आया है मेड्री शब्द से, मेड्री माना टू हील। मेडिटेशन एक ऐसा प्रोसीजर है जो हमारी बॉडी का क्या, तन का क्या, मन का क्या, दोनों का वो हीलिंग कर देता है। तो इसलिए इसका शरीर से कोई लेना देना नहीं है, ये संपूर्ण एक मानसिक प्रक्रिया है। एंड पॉजिटिव थिंकिंग, सदा सकारात्मक विचार कैसे हम क्रिएट करें वो हमें सीखना है, उससे हमारा हीलिंग होगी। पॉजिटिव थॉट्स दे हील, नेगेटिव थॉट्स किल। जैसे कोई व्यक्ति सुसाइड करता है, सुसाइड करता है, क्यों सुसाइड किया भाई, क्या उसके मन में अच्छे विचार चल रहा था? नहीं नहीं, जब हमारे मन में नेगेटिव सोच चलता है, उल्टा सुलटा सोचते हैं, फिर अपने को कोसते रहते हैं और इससे मर जाना अच्छा है, तो लोग सुसाइड कर लेते हैं। तो मन, इसलिए मन को अपना शत्रु, मन को अपना मित्र कहा गया है। मन में अगर अच्छा सोच चल रहा है तो मन अपना मित्र है। अगर आप नेगेटिव सोचते हो तो खुद को सुसाइड भी कर देते हो, तो सोचो तो कितना बड़ा दुश्मन। कोई किसने सुसाइड आपको मर्डर नहीं किया, लेकिन खुद अगर हम सुसाइड कर दिए तो खुद का मर्डर तो खुद बन गए ना। तो इसलिए आत्मा अपना शत्रु भी बन जाता है। तो हम क्यों ना हम अच्छे विचार क्रिएट करें ताकि हमारा बॉडी का हीलिंग हो। तो ब्रह्मा कुमारी सिसोदिया विश्वविद्यालय में जो मेडिटेशन सिखाया जाता है उसको राजयोग मेडिटेशन कहा जाता है। ये हीलिंग मेडिटेशन है। दुनिया वाले आपको सिखाएंगे मेडिटेशन, कहेंगे आंखें बंद करके चुपचाप बैठ जाओ, कुछ सोचो ही नहीं। अरे भाई, कितने समय तक चुपचाप बैठोगे? जब तक जिंदा है सोच तो चलता ही है, तो सोच बिना आप रह नहीं सकते हो, सोच तो चलना ही है। सोच के आधार से ही हमारा भाग्य बनता है। जैसा सोच ऐसा कर्म, ऐसा आदत, ऐसा चरित्र, ऐसा भाग्य बन जाता है। तो जैसा भी हम आज जो भी हैं, जैसे भी हैं, ये हमारा सोच का ही परिणाम है, नतीजा है। आप अगर बिजनेस कर रहे हो तो ज़रूर मन में कभी ना कभी सोचा कि नहीं, मुझे नौकरी नहीं करनी है, मुझे बिजनेस करना है, तो ही तो कर रहे हो। कोई नौकरी कर रहा है तो सोचा होगा, अरे बिजनेस में बहुत झंझट है, नौकरी करना अच्छा है, तो ही नौकरी कर रहा है। तो हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, ये हमारा सोच का परिणाम है। इसलिए सोच को कैसे अच्छा करना, चुपचाप बैठ जाना, उसको मेडिटेशन नहीं कहा जाता है। इसी प्रकार कुछ लोग तो अपने सांस को देखते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं, देखते रहते हैं, मैं ब्रीदिंग कर रहा हूँ, अंदर इन कर रहा हूँ, फिर आउट कर रहा हूँ, इन कर रहा हूँ, फिर आउट कर, इसको देखते रहते हैं, उसको मेडिटेशन कहते हैं। उससे क्या होगा, मन थोड़े समय व्यर्थ बातों से डाइवर्ट होकर एकाग्र हो गया, लेकिन उसको पॉजिटिव थिंकिंग नहीं कहा जाता है। तो दुनिया में तरह तरह के मेडिटेशन, मैं चर्चा नहीं करूंगा उसके बारे में, लेकिन ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में जो राजयोग मेडिटेशन सिखाया जाता है, वास्तव में योग एक सुंदर विधि है जिसमें मन में हम सकारात्मक चिंतन क्रिएट करते हैं। सकारात्मक चिंतन, उसको पॉजिटिव थिंकिंग कहा जाता है। तो पॉजिटिव थिंकिंग वास्तव में क्या है? आत्मचिंतन करना, प्रभु चिंतन करना, सबका भला सोचना, शुभ चिंतन करना, उसको ही मेडिटेशन कहते हैं। तो जब तक आपको आत्मा क्या है, परमात्मा कौन है, ये दुनिया क्या है, दुनिया के लिए, ये दुनिया में हम कहाँ से आए, क्यों आए, मरने के बाद कहाँ जाते हैं, ये सारी बातें, इसको अध्यात्म विज्ञान कहा जाता है। तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक आध्यात्मिक विश्वविद्यालय है, एक स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी है। यहाँ ये सारी बातें डिटेल सिखाई जाती है। तो आप अध्यात्म द्वारा मन को कैसे सदा शांत रखो, सकारात्मक विचार से कैसे भरपूर रखो, इसलिए पहले आध्यात्मिक ज्ञान कि मैं कौन हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, इस शरीर नहीं है, मैं परमात्मा की संतान हूँ, मैं आँखों द्वारा देखने वाली शक्ति, कानों द्वारा सुनने वाली शक्ति, मैं एक आत्मा हूँ, ऐसा अनुभव करना है। और आत्मा के जो अनादि गुण है, आदि गुण है, उस गुणों को चिंतन करते हुए उस गुणों का स्वरूप बनना है। इसको कहते हैं सेल्फ रिलेशन, एंड सेल्फ रिलेशन ब्रिंग्स सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। जब तक आपको आत्मानुभूति नहीं होगी तो आप आत्म परिवर्तन भी नहीं कर सकते हो। इसलिए मेरे भाई और बहनों, मेडिटेशन सीखो, देखो जीवन का सब कुछ बदल जाएगा, अपना संस्कार स्वभाव, जो बुरी आदतें, आप अच्छाई की तरफ परिवर्तन होंगे, ना कि अच्छे की तरफ परिवर्तन होंगे, ना कि बुरे की तरफ। दुनिया में वो भी परिवर्तन है, लेकिन हमारी सारी बुरी आदतें, बुरे कर्म, बुरे संस्कार, बुरे सोच विचार सब खत्म हो जाएगा। बहुत सुंदर चिंताधारा, बहुत सुंदर जीवन शैली आप अपना सकते हो। तो मेडिटेशन द्वारा हम जब पॉजिटिव सोचते हैं, अर्थात आत्मचिंतन करते हैं, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ, मैं परमपिता परमात्मा की संतान हूँ, मैं इस धरा पर अवतरित हुआ हूँ प्रभु संदेश वाहक के रूप में, मैं सबका भला करूँगा, सबका संदेश, बाबा का संदेश सब तक पहुँचाऊँगा, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ। जब ऐसे सुंदर चिंतन हमारे मन में चलता है, इसको कहते हैं आत्मचिंतन। फिर प्रभु पिता परमात्मा कौन है, उनका स्वरूप क्या है, वो कहाँ रहते हैं, उनका नाम क्या है, उनके गुण क्या है, उनकी विशेषताएं क्या है, कर्तव्य क्या है, ये सारी बातों को जब हम चिंतन करते हैं, इसको कहते हैं प्रभु चिंतन। सबका मालिक एक है, ईश्वर एक है, लेकिन आज दुनिया में कितनी मान्यताएं देखो, कोई राम जी करता है, कोई कृष्ण जी करता है, कोई गणपति गणपति, कोई हनुमान हनुमान, कोई क्या कोई क्या, कोई अंबा माता, कोई कोई किसको कोई किसको मानता है। भारत में जितने लोग इतनी बातें उतनी मत उतने मुँह। तो परमात्मा खुद ही अपना स्वयं का परिचय देने आए हैं, जो श्रीमद् भगवद गीता में महावाक्य है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, संसार में मुझे कोई नहीं जानता, कोटि में भी कोई, कोई में भी कोई, कोई नहीं जानते। जब तक मैं आके इस संसार में मैं अपना परिचय नहीं दूँ, लोग मुझे कैसे पहचाने? क्योंकि परमात्मा अशरीरी है, अकाय है, विदेही है, निराकार है। तो परमात्मा ज्योति स्वरूप है, और ओ संसार में तब आते हैं जब अति धर्मग्लानी हो जाती है। जैसे आत्मा ज्योति लाइट है, इन आँखों से नहीं दिखती है, परमात्मा भी ऐसे एक दिव्य ज्योति है जो आँखों से नहीं देख सकते हो लेकिन अनुभव कर सकते हो। तो परमात्मा के गुणों को, स्वरूप को, उपकार को, एहसान को चिंतन करना, उसका नाम मेडिटेशन है। और दूसरों के प्रति भला सोचना, सबका भला हो, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणी पश्यंतु, उसको हम मेडिटेशन कहते हैं। तो राजयोग मेडिटेशन, जिससे आप अपने कर्मेंद्रियों को शांत शीतल अपने कंट्रोल में रख सकते हो, मन बुद्धि भी एकाग्र हो सकता है, मन शांत हो जाएगा, तो बहुत फायदा ही फायदा है। वो मेडिटेशन जब करते हैं, शरीर के अंदर अपने आप हीलिंग होना शुरू हो जाता है। आज दुनिया में सबसे बड़ी घातक बीमारी स्ट्रेस है, टेंशन है, तनाव है। आप देखना, ये कोरोना वायरस के कारण लोग लॉकडाउन हो गए हैं, बहुतों को तो टेंशन है ही है, लेकिन जिनके पास मोबाइल है, टीवी है, एंजॉय कर रहे हैं, अल्पकालिक सुख के साधन। लेकिन आपको एक बहुत बड़ा न्यूज़ है, मैं आपको सुना रहा हूँ, कल ही मैं पढ़ा कि हमारे पृथ्वी का जो मैग्नेटिक फोर्स है, एनर्जी है, वो बहुत कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। क्यों होती जा रही है कोई किसी को पता भी नहीं चल रहा है। और जैसे जैसे मैग्नेटिक फोर्स कम हो जाएगा, देखना ये सेटेलाइट, ये सब चीज़ें सब बंद हो जाएगी, सब इंटरनेट मोबाइल ठप हो जाएगा, नेट बंद हो जाएगा, सब बंद। तो देखना किसी का बैंक में पड़ा रहेगा, किसके चोर लूटेगा, किसके आग में जलेगा, किसका दबी रहेगी धूल में, लेकिन क्या हाल होगा, कितना टेंशन होगा, सोचो आप थोड़े समय के बाद देखना कैसे होगा। तो ये दुनिया में एक भी कोई नहीं बचेगा जो मानसिक रोग ग्रसित ना होगा। तो ऐसे समय पर हम अगर सकारात्मक विचार क्रिएट करने का हमें अभ्यास है, राजयोग मेडिटेशन हम करते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में भी हमारे ऊपर कोई असर नहीं होगा। हम अचल, अडोल, निर्विघ्न होके एकदम बहुत सुंदर स्थिति में हम रह सकते हैं। तो अभी सबको आवश्यक है ये हीलिंग मेडिटेशन, राजयोग मेडिटेशन सीखना। वो बहने तो डिटेल आपको सिखाएंगे, लेकिन आप अपने शरीर को कैसे हीलिंग करो, मैं 2 मिनट आपको अभी कमेंट्री करके सुनाता हूँ। आप, मैं जैसा कहूँगा आप ऐसा चिंतन खुद को खुद देना, फिर देखना आपके शरीर में कैसा परिवर्तन होता है। क्योंकि हमारा चिंतन हमारा शरीर पर डायरेक्ट असर है। मैं अभी अभी आपको बहुत इमली, बहुत अच्छा चटनी, नींबू का अचार, ये सब सुनाता हूँ, खिचड़ी, साबूदाना की खिचड़ी, देखना आपका मुंह से पानी निकलना शुरू हो जाएगा। आप खा नहीं रहे हो लेकिन सोचते ही आपके मुंह से पानी निकल आता है। कोई बहुत दुखी हो जाता है तो आंसू टपकना शुरू हो जाता है, और इसी प्रकार आप गुस्सा करते हो तो लाल पीला हो जाते हो, सांस तेज हो जाता है, आपका दिल का धड़कन बढ़ जाता है। तो हम अगर मेडिटेशन द्वारा सदा शांत कूल काम रहते हैं तो ये स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते ही नहीं है, तो आपको बीमारियां होगी नहीं, अगर है भी तो ये बीमारी छुटकारा इससे मिल जाएगी। तो इसलिए चलिए हम थोड़े समय रिलैक्स भी हो जाइए, लेकिन अलर्ट होके बैठिए, स्ट्रेट बैठिए ऐसे सीधा, और मैं जो आपको संकल्प देता हूँ थोड़ा खुद ही वो संकल्प अभ्यास कीजिए। मैं तो आपको 2 मिनट अभी अभ्यास कराऊंगा, लेकिन ऑनेस्टली कह रहा हूँ, अगर आप सभी मेडिटेशन सीखना है तो ब्रह्मा कुमारी सेंटर से, हमारी बहनों से अच्छी तरह से सीखो। मैं एक डॉक्टर होने के नाते कह रहा हूँ, क्योंकि मैं जब पढ़ाई पूरी की एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में ज्वाइन किया, और वहाँ इतना गर्दी, इतना भीड़, डेली 200, 250, 300 पेशेंट, तो मैं सोच रहा था बहुत कम उम्र में हार्ट अटैक हो जाए कि पागल हो जाऊँगा। और ऐसे सिचुएशन पर ही मैं पॉजिटिव थिंकिंग मेडिटेशन सीखा, तो मेरा जीवन ही बदल गया, वो स्ट्रेस सब खत्म हो गया। तो इसलिए मैं आपको मेरा अनुभव के आधार से भी कह सकता हूँ, मेरे भाई और बहनों, मेडिटेशन सीखो। अभी 2 मिनट चलो मैं आपको एक कमेंट्री देता हूँ, उसी अनुसार अनुभव करो बॉडी का हीलिंग कराने के लिए, ठीक है? मन को भी, शरीर को भी, तन को भी कैसे हीलिंग करें। चलिए हम सभी बाह्य जगत के सभी संकल्प विकल्पों को विराम देकर एक अंतर मन की यात्रा में चलते हैं। आप अपने आप को पूछिए कि मैं कौन हूं। विवेक कहता है कि शरीर तो एक हड्डी मांस का पुतला ही है, इसको चलाने वाली शक्ति एक आत्मा है जो कि इस शरीर को चला रही है। तो मैं एक आत्मा हूं, इस शरीर में विराजमान होकर मेरे एक एक कर्मेंद्रियों को राजा बनकर नियंत्रण कर रही हूं। इन आंखों द्वारा देखने वाली शक्ति में आत्मा हूं, ये कानों द्वारा सुनने वाली शक्ति में आत्मा हूं, और मेरे समान अनगिनत मनुष्य इस संसार में अभिनय कर रहे हैं। ये संसार एक सृष्टि रंगमंच है, यहाँ भिन्न भिन्न शरीर रूपी ड्रेस पहनकर हम आत्माएं अभिनय कर रहे हैं। हम सभी आत्माएं पिता परमात्मा की संतान हैं। मैं एक शुद्ध पवित्र आत्मा हूं, मैं परमात्मा की संतान हूं। जैसे मेरे पिता परमात्मा शांति का सागर है, मैं भी एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। मैं एक पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ, एक चमकता हुआ दिव्य सितारा हूँ। जैसे मैं आत्मा ज्योति हूँ, ऐसे मेरे पिता परमात्मा भी एक दिव्य ज्योति हैं। इस संसार से बहुत ऊपर, सूरज चांद सितारों से भी ऊपर, एक छठा तत्व है जहाँ चारों ओर सुनहरी लालिमा, प्रकाश ही प्रकाश, अनंत शांति, उस ब्रह्मलोक में शांति धाम, मुक्ति धाम, परम धाम मेरा निजी धाम है, जहां मेरे पिता परमात्मा शिव बाबा भी रहते हैं। अब अनुभव कीजिए, शिव बाबा सूर्य समान चमक रहे हैं, बाबा की शक्तिशाली किरणें उतर उतर कर मुझ आत्मा में पड़ रही है, मेरे जन्म जन्मांतर के विक्रम दग्ध हो रहे हैं। मैं परमात्मा पिता को पहचान कर तृप्त हो गया, मेरे सारे संशय छिन्न भिन्न हो गए। बाबा की किरणें उतर उतर कर मेरे शरीर के एक एक अंग में प्रवाहित हो रही है। ऊपर देखिए, शिव बाबा चमक रहे हैं एक सूर्य समान, बाबा से किरणें उतर रही है शक्तिशाली शुभ्र रश्मियां, वो किरणें मुझ आत्मा में समा कर मेरे जन्म जन्मांतर के विक्रम दग्ध हो गए। अब मेरे शरीर के अंग अंग में बाबा की किरणें फैल रही है, मेरे शारीरिक सभी व्याधियां अभी समाप्त हो रही हैं। मेरा ब्लड प्रेशर, मेरा शुगर, मेरा हार्ट की बीमारियाँ, मेरे कोलेस्ट्रॉल, अब सब कुछ सामान्य हो गया। बाबा मेरा बद्यनाथ है, सुप्रीम सर्जन है, उनकी अशेष अनुकंपा मेरे ऊपर बरस रही है। बाबा से हीलिंग पावर की शक्ति लेकर मैं अपने शरीर को स्वयं हीलिंग करा रहा हूँ। मैं एक पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ, प्रभु पिता की संतान हूँ। ओह बाबा, आप मुझे 21 जन्म के लिए निरोगी भव का वरदान दे रहे हो, मैं कितना ना खुश नसीब हूँ बाबा। शुक्रिया शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति ओम शांति। आपके मन में जो भी प्रश्न उत्तर है आप मन में नोट किए हो तो इस प्रश्न उत्तर का कार्यक्रम रखेंगे, मैं आपका सभी प्रश्नों का उत्तर भी दूंगा। ओके।